ओम शांति। एक वक्ता अपने अत्यंत प्रभावशाली भाषणों के लिए प्रसिद्ध था। उसने औपचारिक शिक्षा बहुत नहीं ली थी, परंतु वो व्याख्यानों में कहता था कि उसने जीवन की पाठशाला से सीखा है। जीवन की ठोकरों ने उसे सिखाया है। और वो विविध विषयों पर बोलता था और लोगों को ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होता था। ऐसी अद्भुत प्रतिभा, सभा में से कोई दर्शन शास्त्र का प्रश्न पूछता था तो वो दर्शन शास्त्री की तरह उत्तर देता था। और यही उसकी सभा की एक विशेषता थी, प्रश्न उत्तर। कोई विज्ञान का प्रश्न पूछता तो वैज्ञानिक बनकर वो उत्तर देता। कोई भाषा का प्रश्न पूछता तो वो भाषाविद बनकर उत्तर देता। और उसके उत्तर सुनकर लोग अचंभित हो जाते थे। और प्रभावित, ऐसी ही एक सभा चल रही थी, कुछ प्रश्न हुए और फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ प्रश्न पूछने के लिए, परंतु वो अपने जेब टटोलने लगा, अपनी टोपी उतारी उसमें ढूंढने लगा, अपने मोजे भी उतारे उसमें ढूंढने लगा। वक्ता ने कहा, आखिर प्रश्न क्या है? उसने कहा, आपके लोगों ने जो पहले से प्रश्न मुझे दे के रखा था उसे मैं ढूंढ रहा हूं। आपके लोगों ने जो पहले से प्रश्न दे के रखा था उसको मैं ढूंढ रहा हूं। अर्थात सारे प्रश्न और सारे उत्तर रटे रटाए हैं। अर्थात वक्ता केवल शब्दों का खिलाड़ी है, केवल उधार के ज्ञान से अपनी इस कलाकारी को चला रहा है। उसका अपना कुछ नहीं है, जो सीखा है वो यहां वहां से लिया है, उधार का ज्ञान, स्वनिर्मित नहीं है, स्वचिंतन से जन्मा नहीं है। सुनना और सोचना एक बात है, सुबह की अव्यक्त वाणी, सुनना और सोचना एक बात है, परंतु अनुभव करना ये अलग ही बात है। इसलिए अध्यात्म यदि केवल एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वो शब्द है रियलाइजेशन, अनुभूति। किसने कितना पढ़ा है और किसको कितना पता है और कितना याद है और कितना कंठ कर रखा है और कितने कोटेशन दे रहा है, इसका ज्ञान से बहुत कम संबंध है। ज्ञान अर्थात अनुभूति। आज की मुरली में दो शक्तिशाली वाक्य आए हैं। पहला, दो अलग अलग जगह पर, सोमान की अथॉरिटी तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। दूसरा, अनुभूति अनुभव की अथॉरिटी तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जब तक ये ज्ञान अनुभव ना बन जाए, ये योग अनुभव ना बन जाए, धारणाएं अनुभव ना बन जाए, सेवा अनुभव ना बन जाए, तब तक ये केवल किताबी ज्ञान है ऊपर ऊपर का। डीप नहीं। अध्यात्म में दो शब्द है, एक अनुभव और दूसरा अनुभूति। शब्दकोश डिक्शनरी में दोनों का अर्थ सेम दिखाया है, बताया है, पर दोनों में अंतर है। कौन सा? एक है अनुभव, एक है अनुभूति। मुरलियों में भी दोनों शब्द समान अर्थ आर्थी रूप में प्रयोग होते हैं, परंतु अध्यात्म जगत में मूलभूत अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। एक है अनुभव, एक है अनुभूति। क्या अंतर है? क्या अंतर? आत्मा का अभ्यास करना अनुभूति और शरीर का अभ्यास करना अनुभव। अशरीरी होना अनुभूति और विदेही होना अनुभव। क्या अनुभव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अनुभूति को एक्सप्रेस नहीं? ये नजदीक है थोड़ा। और अनुभव बाहर है, अनुभूति भीतर। अनुभव में समय सीमा है, अनुभूति समय से पार है। अनुभूति अवचनीय है, निर्वचनीय है। अनुभूति मौन है, अनुभव में शब्द है। अनुभव में मैं अभी बचा है, मुझे अनुभव हुआ, अनुभूति में मैं ही खो जाता है। बारिश हो रही है, यह अनुभव है। मैं भीग रहा हूं, यह अनुभूति है। ये आग है और हाथ जला उसमें, यह अनुभव। मैं ही आग हूं, यह अनुभूति। अनुभव यहां है तो अनुभूति गहराई में है। अनुभव भी बहुत गहरा है, सुनना सुनाना वो अनुभव नहीं है। अनुभव इटसेल्फ बड़ा डीप है, पर अनुभूति उससे भी नीचे है। अनुभूति मौन है। अनुभूति में और एक महत्वपूर्ण चीज है, अनुभूति का संबंध, अनुभव का संबंध मेमोरी से है, स्मृति से है। अनुभूति का संबंध स्वरूप से है। अनुभव एक याद है कि मुझे अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ। स्मृति, मेमोरी, अनुभूति स्वरूप और अनुभूति की और एक महत्वपूर्ण बात है, अनुभूति शरीर के तल पर होनी चाहिए तो कहा जाएगा अनुभूति। केवल मन में हो रहा है, बहुत खुशी हुई, यह अनुभूति नहीं है। अशरीरीपन का अनुभव हो गया, थोड़ा बहुत खुशी हुई, ये अनुभव है। अनुभूति शरीर के तल पर अनुभव की होती है, अर्थात क्या भक्ति में, नाट्य शास्त्र में, आध्यात्मिक साहित्य में एक वाक्य है या एक शब्द है, अष्ट सात्विक भाव। वो अष्ट सात्विक भाव का प्रकट हो जाना, और वो अष्ट सात्विक भाव जबरदस्ती नहीं लाए जा सकते, वो अष्ट सात्विक भाव एफर्ट से, मेहनत से, संकल्प से, नकल कर दिखावे से नहीं किए जा सकते। वो सारे अष्ट सात्विक भाव जब प्रकट हो तो माना जाएगा, और वो सब शरीर के तल पर प्रकट होते हैं तो हम कह सकते हैं ये अनुभूति है। और जैसे कहा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो कब होगा हमें पता नहीं, पर अगर ऐसा इनमें से एक सेकंड के लिए भी हो गया, एक सेकंड, तो वो स्वरूप बन जाएगा। अनुभव केवल स्मृति तक है, मुझे अनुभव हुआ था, ये एक मेमोरी है, पर अनुभूति स्मृति नहीं, स्वरूप है। तो ये सारे ही उसमें प्रकट हो जाए। सुबह की अव्यक्त वाणी सारी किस पर है? अनुभूति, अनुभव करो, सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, सोचना, ये बहुत हो गया अनुभूति। और वो अष्ट सात्विक भाव आठ है, एक्सट्रीम। कोई भक्त है, कोई पैशनेट है, अत्यंत डूबा हुआ, उनमें ये प्रकट होते हैं। और हम में से जितने यहां बैठे हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में उन आठों में से एक की अनुभूति तो जरूर की होगी। हो सकता है किसी ने आठों की कर ली। सबसे पहला है स्तंभ। मुरली सुनते सुनते, बाबा के कमरे में बैठे बैठे, योग करते करते, या फिर भक्ति मार्ग का कोई भक्त सत्संग में बैठा है और शरीर स्थिर हो जाए, उसे पता ही नहीं, मोशनलेस, ऐसा खो जाए, इतना खो जाए कि शरीर का हिलना डुलना सब बंद, ऐसा अगर एक सेकंड भी हो जाए तो वो गहराई में चला जाता है। कोई सभा में बैठे हैं, कोई क्लास में बैठे हैं, या अकेले बैठे हैं, या प्रकृति के सानिध्य में बैठे हैं, स्थिर हो गए, पता ही नहीं चला। टाइमलेसनेस, समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगर ये हो जाए तो कहेंगे अनुभूति हुई। कोई सामान लिया और उस सामान का चिंतन करते करते इतना खो गए कि शरीर स्थिर हो गया। हमने किया नहीं, नकल नहीं कर रहे, किसको दिखाने के लिए नहीं, किसको बताने के लिए नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि पड़ा हुआ है, या तो दूसरे हमको देख रहे हैं, हम योग में बैठे हैं स्थिर, तो उनको लगे कि हम महान योगी है। दूसरा, रोमांच, पूरे शरीर में पुलक, पूरे शरीर में रोमांच। अगर ये रोमांच एक सेकंड के लिए भी आ जाए तो कहेंगे अनुभूति हो गई। हम जैसे कहा, इसको जबरदस्ती नहीं ला सकते, इसकी नकल, इसका दिखावा भी नहीं कर सकते, एक्टिंग भी नहीं कर सकते। वो होगा तब होगा, रोमांच, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे जिसके प्रति अत्यंत आदर भाव है, बहुत श्रद्धा से हम उसे देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने गुरु से मिलता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई भक्त किसी मंदिर में जाना चाहता है, उसे रोका जाता है लंबे समय से, और फिर उसको एक झलक मिलती है उस मूर्ति की, रोमांच खड़े हो जाते हैं, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ऑरिपाइलेशन, पुलक। अगर ये हो जाए तो समझना अनुभूति हुई, अनुभूति शरीर के तल पर प्रकट हो। तीसरा, स्वेद अर्थात पसीना। बाहर ठंडी है, -0 degree टेम्परेचर चल रहा है, और ये पसीना कोई गर्मी वाला पसीना नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई है भीतर, और अचानक बैठे बैठे पसीना। एक्सट्रीम प्यूरिटी में इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा। एक्सट्रीम लव ऑफ गॉड, अत्यंत प्रभु प्रेम में जब चेतना डूबती है तो इसमें से कुछ होगा। चौथा, अश्रुपात। ये आंसू दुख के नहीं है, इसे अध्यात्म में टीयर्स ऑफ द सोल कहा जाता है। अपने आप आंसू बहने लगते हैं, इन आंसू में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। ये आंसू प्रेम के है, कृतज्ञता के है, धन्यवाद के है, उस परमात्मा के प्रति कि तुमने मुझे क्या क्या दे दिया। आंसू रुक ही नहीं रहे, हम ये जबरदस्ती नहीं ला सकते आंसू, थैंकफुलनेस के है कि तुमने कैसे बचाया। और आत्मा इन आंसुओं से शुद्ध होती है। कई लोग कहते हैं आंसू ही सूख गए जब से ज्ञान में आए, तब से, पहले बहुत आते थे, इधर नहीं आते, कड़वाहट भर गई है। पांचवा, कंप, कंपन होता है शरीर में अपने आप। हम बैठे हैं और कंपन हो रहा है, ये वो वाला कंपन नहीं, डर वाला, पैनिक वाला, एंजाइटी वाला, वो नहीं। मन दुखी है, दर्द में है, अंदर सप्रेशन हुआ है, या हैबिट हो गई, या एडिक्शन, या बीमारी, या क्यों हो रहा है, वो नहीं, वो वाला नहीं है, मेडिकल वाला नहीं, साइकोलॉजिकल वाला नहीं। यहां किसी अनुभूति में है चेतना, कोई अशरीरी अवस्था है जिसमें यह हो रहा है। अगला, विवर्णता। चेहरे का रंग ही बदलता है, या तो एकदम पेल, या तो एकदम फ्लश्ड, सब एक साथ प्रकट होंगे आवश्यक नहीं है, एक ही व्यक्ति को होगा, ये तो बड़ा रेयर है। पर सबने अनुभव तो किया होगा कभी ना कभी, इनमें से कोई एक, और कभी दो भी, कभी तीन एक साथ, कभी चार एक साथ। सातवा, स्वर भंग। स्वर भंग, गला घुट जाता है, आवाज ही नहीं निकलता। कोई भाषण देने जा रहा है और अचानक ही कोई अनुभव सुना रहा है, कोई ऐसा अनुभव बड़ा गहरा, बाबा कहते हैं गला घुट जाता है, स्वर भंग। ऐसा अगर एक सेकंड भी हो जाए, सुबह सुबह, अमृत वेला, नुमा शाम, या कभी दिन में, या कभी महीने में एक बार, या साल में एक बार, या 10 साल में एक बार भी, अनुभूति परिवर्तन है, अनुभव एक जागरण है, अनुभव जागरण, अनुभूति परिवर्तन। फिर व्यक्ति वो नहीं रहेगा, लास्ट प्रलय, प्रलय एब्सोल्यूट डिसॉल्यूशन ऑफ द ईगो, ये लास्ट इस प्रलय की अवस्था में हो सकता है व्यक्ति बेहोश हो जाए, पर वो वाली बेहोशी नहीं है संसार की। कोई भजन कोई गीत सुनते सुनते धड़ से व्यक्ति गिरता है, ये भी हो सकता है। इसको कहते हैं अष्ट सात्विक भाव, और ये किधर भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, एनी टाइम। हमें याद है जब हम छोटे थे तभी इस ज्ञान में नहीं थे, इसका कुछ पता नहीं था, पर यह पता था कि यह सब जो है यह ईश्वरीय अवतार है, यह परमात्मा ही है, आत्मा नहीं, स्वयं नारायण, रोगी नारायण। वो पेशेंट्स को देखते थे इंटर्नशिप में तो आंसू आते थे, ड्रेसिंग करते करते आंसू, कुछ भी करने जाओ आंसू, और कुछ कुछ होता था पूरे शरीर में। हमने एक हमारे मैडम थे टीचर, उनसे पूछा था ये क्यों हो रहा है, तब पहली बार ये शब्द सुना था, इसे अष्ट सात्विक भाव कहा जाता है। तो वो सभी ने अनुभव किया है, जब दिल भर जाता है गदगद तो इनमें से कुछ तो होगा, और वो अगर हो गया तो वो अनुभूति स्वरूप बन जाती है, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी थर्ड टाइम चल रही है, डेट क्या है, 2010 की शांतिवन में फिर चली, 2019 में बाबा मिलन में रिकॉर्डेड अव्यक्त वाणी, और आज 2026 में फिर से चल रही है, तो तीसरी बार ये चल रही है। तो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें क्या क्या था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं, जहां से जो पॉइंट याद आता है वो बताओ क्या था। क्या, जहां मोहब्बत है वहां पर मेहनत नहीं, जहां मोहब्बत है वहां पर 10 बातें कौन सी नहीं है वो बताओ। जहां मोहब्बत है वहां एक तो मेहनत नहीं है, दूसरा चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, 6 हो गए, शंका डाउट नहीं है, कोई क्या नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, और क्या नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, तर्क वितर्क, छलकपट नहीं है, छलकपट, कोई षड्यंत्र नहीं है वहां, और कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अनकंडीशनल है, बेशर्त, तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूं, हमने लिखा आई लव यू, अब तुम्हारा इंतजार है, भेजा, अभी तक आया नहीं है, तो कैसे माने हम तुम्हारा हमसे प्यार है, कब से मैसेज भेज के रखा है, इस प्रेम में क्या है, एक्सपेक्टेशंस। लोग संसार में भगवान को प्रेम भी करते हैं, उसके पीछे भय होता है थोड़ा, गॉड फियरिंग रिलीजन। बहुत सारे रिलीजन्स जो है वो कैसे हैं, रिलीजन की भी 7 प्रकार के धर्म है, 7 प्रकार की कैटेगरीज, उसकी कभी और चर्चा करेंगे, पर एक प्रकार का धर्म है गॉड फियरिंग रिलीजन, जो सिखाता है तुमने अगर ये किया दंडे मिलेंगे, दंडे, तुमको उबाला जाएगा तेल में,
गरम गरम तेल में, उसमें भय है। तो जहां मोहब्बत है वहां पर भय नहीं, वहां मेहनत नहीं, वहां शंका नहीं, वहां प्रश्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। इसको कहा जाता है लव फॉर लव सेक। इसको क्या कहते हैं? प्रेम किस लिए? प्रेम के लिए। लव फॉर लव सेक। कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, इसमें कैसा डर रहेगा? छोटा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, अब्बा जान क्या आप शेर से डरते हो? अब्बा जान कहेंगे, कहते हैं शेर होगा जंगल का, मेरे सामने तो वो बिल्ली है। बेटा फिर भाग के आता है थोड़ी देर के बाद, अब्बा जान क्या आप भूत से डरते हो? कहते हैं भूत, ये भूत भी कुछ नहीं होते, सब कल्पनाएं हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से भाग के आता, क्या आप अल्लाह से डरते हो? कहते हैं अल्लाह से थोड़ी डरते हैं, अल्लाह तो प्यार है, वो तो प्रेम सिखाते हैं। फिर लास्ट में कहता है तो आप इन तीनों से नहीं डरते, तो जरूर अम्मी जान से डरते होंगे। तब वो कुछ भी नहीं बोलता है, डर तो है, व्यक्ति बदलते हैं बस। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति से हमें बहुत डर लगता है उससे हम प्रेम नहीं कर सकते। एक पॉइंट और क्या बताया आज? क्या करो? चारों सब्जेक्ट में टाइम, कितने टाइम में? एक सेकंड में चारों सब्जेक्ट में अनुभव करो। चारों सब्जेक्ट का अनुभव करो, चारों सब्जेक्ट में समान का अनुभव करो। और लाइट माइट, और लाइट माइट किस में? नॉलेज में। और समान का क्या? व्यर्थ बातें। हम व्यर्थ बातों से क्या करना है? दूसरों को डिस्टर्ब करना है। कब? व्यर्थ बोलना अर्थात दूसरों को डिस्टर्ब करना। और योगी जीवन वाले हैं, योग लगाने वाले नहीं है, योगी जीवन वाले हैं। निरंतरता, प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। प्रोफिशिएंसी अर्थात दक्षता, योग में कितना कोई स्किल्ड है यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर निरंतर कितना है वो इंपॉर्टेंट है। अगला, हो गया। और परिवार कैसे? सूक्ष्म घृणा की परिभाषा है मुरली में, क्या है? गिरे हो क्योंकि राना नहीं, सूक्ष्म घृणा की परिभाषा बताओ मुरली के आधार से। ये बदलेगा नहीं है, ऐसा ही है, हमको पता है। हमको बता रहे हो क्या? 10 साल से जानते हैं उसको, उसका बाप भी ऐसा ही था। ये कोई आपका थोड़ी ना है, तो उसके रक्त में, उसके खून में ही है बेईमानी। भले इधर आ गया पर खून थोड़ी बदलता है, हम जानते हैं ये ऐसा ही है। तो ये इसको क्या कहा बाबा ने? सूक्ष्म घृणा। ये भी सोचना घृणा है। हर आत्मा आगे बढ़ रही है, हर आत्मा चेंज हो रही है। सबसे पहली बात, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वो भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अपनी डायरी में लिखना है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, दूसरों की आलोचना करने वाला मैं कौन। सुंदर वाक्य है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, दूसरों की निंदा करने वाला मैं कौन। और क्या कहा, जहां स्मृति है वहां समर्थी है, तो जहां स्मृति होगी वहां समर्थि होगी, जहां विस्मृति होगी वहां पर कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, सारे पतन की जड़ विस्मृति है। पतन जो हुआ है वो उसे एक ही शब्द से हुआ है, विस्मृति से। खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। और कभी कभी तो मनन और सहन फरिश्ता की दो निशानियां, और क्या कोटो में कोई कौन है वो, तो हम सब कौन है कोटो में कोई, साधारण तन में रूप में आए हुए भगवान को पहचानने वाली आत्मा। और क्या कहा, काय का अनुभव करो, मस्तक का, मस्तक पर लाइट, और वो हो गया कर्म का, और स्विच, स्विच के बारे में क्या बोला, सीट और स्विच समान है, स्विच सीट, और अनुभव है स्विच, और नॉलेज अर्थात लाइट माइट हो गया, और वो हो गया 50 बार अनुभव। अरे वाह, 50 बार अनुभव शब्द है स्पिरिचुअल कैलकुलेशंस, मतलब ध्यान से पढ़ा है, और शुभ भावना शुभकामना किसके प्रति, तीन प्रकार की आत्माएं कौन सी, मायूस मायूस डल, जो पुरुषार्थ में डल है वो, और तीसरा जो संस्कार के वश है। इन तीन आत्माओं के प्रति क्या शुभ भावना है, वो वश में है। जैसे हम व्यक्तिगत रूप से किसी एक संस्कार से अंदर लड़ रहे, उसी तरह वो भी लड़ रही है, अलग अलग है, तो हम क्यों उसके तरफ घृणा भाव से देखें। जैसे उसकी वो कमजोरी है तो मेरी ये है, उसको उसमें आंसू आ रहे मुझे ही तो इसमें आते हैं, एक ही हुआ ना। हमको लगता है इतनी छोटी बात में, हमारा एक डॉक्टर था तो वो छुट्टी का एप्लीकेशन लेके आ गया, तो लीव फॉर्म, उन्होंने कहा क्या कहाँ जाना क्या है, नहीं जाना है अर्जेंट है, और फिर रोना चालू किया, मुझे मेरी दादी की याद आ रही है। और कोई कारण नहीं, यही कारण। और क्या कहा, प्रकृति, प्रकृति के लिए अच्छा शब्द प्रयोग किया है, कौन सा प्रकृति, व्हाट प्रकृति, पति, ये प्रकृति जीत से थोड़ा अच्छा है, प्रकृति जीत में आक्रमण है, जीतना है उसमें, ये थोड़ा ठीक है प्रकृति पति, और ज्ञान का स्वरूप बनो। अच्छा, और योग अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अर्थक्वेक चली गई नहीं, टिकट कट गई, और 2010 में अर्थक्वेक आया था ना हैटी, और दो तीन घंटा योग करो। अच्छा योगी जीवन वाला बैठ और विघ्नों का क्या, तभी अनुभवी मूर्त होंगे। और निराकारी निर्विकारी निरंकारी तीन शब्द और देवन कितना पक्का हो गया है। निराकारी निर्विकारी निरंकारी ये जो चित्र है इस पे अनुभूति करनी है। निराकारी यहां देखते हुए, निर्विकारी आंखों में देखते हुए, निर्विकारी निरंकारी बोल में, निरंकारी दृष्टि में, दृष्टि में निर्विकारी और निराकारी। जब जब ये ब्रह्मा का चित्र देखो या बाप दादा का, इन तीनों शब्दों को इन तीन चीजों के साथ जोड़ देना और अनुभव करना। और क्या कहा, हो गया। जिसको अनुभव होता है वो धोखा नहीं, जिसको अनुभव हो गया उसको कितना भी कोई समझाए ये सूरज रोशनी नहीं देता है, और उसको अनुभव हो चुका है कि सूरज ही रोशनी देता है। चीनी का उदाहरण दिया ना, जिसने टेस्ट कर लिया वो चीनी है, एक नमक का पहाड़ है, बचपन से वही खा रही है, उसको बताया ये चीनी है, वो खा रही है, ये खा रही है। दूसरी चींटी आती है, वो कहती है ये शक्कर थोड़ी ना है, शक्कर उधर है, वो कहती है हट यहां से, यही शक्कर है, मैं क्यों मानूं, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो खा रही है, वो कहती है ये मानेंगे, उसको पकड़ के ले जाती है उधर, ये खाओ। तब उसे समझ में आ जाए, अरे ये है। एक बार अनुभव हो गया आप कोई नहीं इसको चेंज कर सकता, कोई कितना भी कहे। ये ब्रह्मा भी आके कह दे मेरे तन में शिव बाबा नहीं आता है तो भी हम कहेंगे तुम्हारे ही तन। निश्चय इतना पक्का है, ऐसा ही है, क्योंकि अनुभूति आधारित सत्य है। तो इस मुरली से हम पांच बातें निकालेंगे। सबसे पहली पॉइंट अनुभूति। अनुभूति के लिए जैसे कहा, सबसे पहली बात अनुभूति शरीर के तल पर हो, उसमें वो कोई ना कोई अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाए। दूसरा, अनुभवी आत्मा को माया हिला नहीं सकती, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो अनुभूति किसकी, चार बातों की अनुभूति करने के लिए मुरली में कहा है। सबसे पहला ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति। ज्ञान तो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसकी अनुभूति कैसे, उसकी अनुभूति हो, अनुभूति होगी चिंतन से, उसकी अनुभूति होगी लिखने से। ऐसा एक भी दिन नहीं जाए जिस दिन हमारे ये हाथ ज्ञान न लिखे। एक नए संस्कार, मसल मेमोरी डेवलप करनी है ज्ञान के शब्द लिखने की डेली लिखना है। पॉइंट्स लिखो, समान लिखो, कुछ भी लिखो पर लिखो। जब हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, अपनी भावनाओं को लिखो, अपने ड्रीम्स को लिखो, मुझे कैसा बनना है, अभी हूं नहीं पर बनने की इच्छा तो है, बनना तो चाहता हूं, ऐसा ही है और ये होगा। जो हम लिखते जाएंगे मुझे बनना है, मुझे बनना है, परिस्थितियां ही क्रिएट होगी धीरे धीरे, वैसे अपने आप, कि हम वैसा अपने आप बनेंगे। तो ज्ञान की अनुभूति में बाबा ने क्या कहा, कौन से शब्द प्रयोग किए, दो, लाइट माइट हर कर्म। ज्ञान यदि कर्म में डाल दिया तो वो कर्म से हम डिटैच रह सकेंगे। कर्म किया डिटैच्ड, कर्म किया डिटैच्ड, उसका क्या हो रहा है, लोग को जो करना है करने दो, पर हम उससे डिटैच हो चुके। तो नॉलेज गिव्स द पावर ऑफ डिटैचमेंट. नहीं तो कर्म बांधते हैं, अच्छे कर्म किए तो उसकी स्मृतियां मेमोरी वो सब पकड़ के रखता है. आगे बढ़ जाओ, वो हो गया हो गया. और हम जागृत रहते हैं, जागृत. औरंगजेब जब था तब उसने बहुत जुल्म किए. वहीं पर एक आगरा में एक फकीर था, वो सूफी था, सूफी फकीर. उसको पकड़ा, उसको समझाया, पर वो तो सुनने को तैयार नहीं. उसको सजा सुनाई कि हमारे राज्य में रहते हुए मेरी आज्ञा पर नहीं चलता है. उसको सजा सुनाई ठंडे ठंडे पानी में रात भर निर्वस्त्र तुमको खड़े रहना है, गले तक सिपाही रहेंगे, चिल्ड वाटर, ये उसकी सजा. अभी भी सुन लो, अभी भी मान लो जो मैं कह रहा हूं. पर वो सूफी तो एक विद्रोही होता है, एक अलग ही होता है. वो मानने को तैयार नहीं था. सुबह उठ के उसको पूछा, बोलो कैसी रही. वो कहता है आधा आपके जैसा, आधा उससे भी ज्यादा अच्छा. वो कहता है क्या. वो कहता है जब मैं पानी में था तो आप क्या कर रहे थे. आपके महलों में संगीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था, सब सुख सुविधाएं थी. मैं वहां बैठ के मन से इमेजिन कर रहा था कि मैं आपके वहां पर हूं, इसलिए मैं आपके जैसा आधा. और वो कहता है आधा आपसे भी अच्छा. वो कैसे. और कभी कभी मुझे जाग आता था कि मैं तो यहां हूं, ये रियलिटी है, पर आप तो जाग ही नहीं रहे, इसलिए आपसे अच्छा. तो कर्म में जागरण. कर्म करते करते हम बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. दोपहर होते 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 या शाम होते होते सब भूल जाता है, आत्मा परमात्मा सब गॉन. जब तीन चार लड़ाइयां हो जाती है तो अपने आप कब होती है पता ही नहीं चलता है. और तब कहीं जाके निकल के डिपार्टमेंट से बाहर जाके फिर याद आता है, योग में बैठते नुमा शाम, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. तो ज्ञान को क्या करना है, बार बार याद करना है. सुबह सुबह मुरली पढ़ो, सुबह सुबह मुरली पॉइंट्स लिख के रखो, उन पॉइंट्स को जेब में रखो, बीच बीच में निकालो और पढ़ो, ताकि क्या होते रहे, रिवीजन होता रहे. ज्ञान एकदम वोलेटाइल है, उड़ जाता है, याद ही नहीं रहता है. रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, निरंतर रिवीजन, सतत रिवीजन, सतत स्मृति. पाप निरंतर की है ना, तो स्मृति भी कैसी हो, निरंतर. पाप सतत की है, अखंड पाप, सतत साधना की है पाप की, तो ये साधना भी कैसी हो, अखंड. तो सबसे पहला अनुभूति कौन सा है, ज्ञान का. एक लाइन पढ़ो और अनुभव करने की कोशिश करो, एक लाइन पढ़ो रुको अनुभव करो, सोचो उसके विषय में, तो अनुभव अपने आप होगा. दूसरा क्या है, योग. योग से क्या, कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिया वश में हो. अगर हम योग कर रहे परंतु इंद्रिया वश में नहीं है, इंद्रिया पांच, रूप रस स्पर्श शब्द गंध. रूप आंखें कुछ देखना चाहती है, रस जीवा कुछ खाना चाहती है, स्पर्श कुछ टच करना चाहती है. हम ये सोच रहे हैं कि इसमें खुश सुख है किसी टच में. गंध नाक, रूप रस स्पर्श शब्द कान, कोई शब्द कोई गीत कोई संगीत कोई म्यूजिक हो तो वो भी एक एडिक्शन ही है. कर्मेंद्रिय जीत अर्थात सारी इंद्रिया वश में. और वो भी दमन से नहीं, वो भी जबरदस्ती नहीं। कैसे आ जाए वो? अपने आप। और ये होगा तभी जब एक महान लक्ष्य हमारे पास है, नहीं तो क्या होगा? केवल दमन, केवल सपरेशन होगा। अगर रीजन नहीं है, वाय नहीं है हमारे पास ब्रह्मचर्य का, तो उसका क्या होगा? केवल दमन। इसलिए काम लक्ष्य पर करना है, काम ध्येय पर करना है। नहीं तो जब दमन हो जाए, कोई नदी बह रही है और उसको बांध बांध के बांध दिया जाए, तो क्या होगा? एक तो पानी सड़ेगा, सड़ांध उत्पन्न होगी, या बाढ़ आ जाएगी, विस्फोट होगा। काम महाऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है। इस ऊर्जा को यदि कार्य में नहीं लगाया गया, तीन परिणाम है। एक फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, अकेलापन, ब्रह्मचारी पर अकेलापन। दूसरा इरिटेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। और तीसरा अहंकार, अपने ब्रह्मचर्य का अहंकार। ये तीन गतियां हैं। यदि इस प्रचंड ऊर्जा को हमने सही दिशा नहीं दी, इट नीड्स न्यू चैनल, न्यू डायरेक्शन। और वो दिशा क्या हो सकती है? सत्य की खोज। वो दिशा क्या हो सकती है? परमात्मा प्रेम। वो दिशा क्या हो सकती है? सेवा। कि मेरे अंदर जो इतनी ऊर्जा है, इसको मुझे सेवा में अगर कहीं नहीं लगाया, तो फिर वो इधर उधर भटकती है। उसको काम चाहिए, वो ऊर्जा है। इसलिए दमन से नहीं, भागने से नहीं, लड़ने से नहीं, ब्रह्मचर्य इन तीनों ही बातों से सदा नहीं जा सकता। काम से अगर लड़ते रहे तो पराजित कर देगा, वो बहुत शक्तिशाली है। उससे भागते रहे तो और डराएगा, और उसको दबा दिया तो वो आधी रात को सोते समय या किसी अनअवेयर्ड मूमेंट में, बेहोशी के किसी पल में विस्फोट बनकर बाहर निकलेगा, धक्का दे देगा, विकर्म होगा, और फिर पश्चाताप, रिक्तता, खालीपन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब करेगा। इसलिए ज्ञान को क्या करो? योग का परिणाम क्या है? कर्मेंद्रिय जीत, शांत हो रही है। जो उत्तेजना है वो धीरे धीरे कम होती जाए, जो चंचलता है वो कम होती जाए। तीसरा, धारणा। धारणा कैसी होगी? ऑटोमेटिक, अपने आप। चौथा, सेवा। सेवा के लिए क्या कहा? जो तीन प्रकार की आत्मा है, हर एक के प्रति ये सोचो ही नहीं है ऐसा ही है, इसने ऐसा ही है। हर एक आगे बढ़ रहा है, हम बदल रहे, वो भी बदल गया। जो 10 साल पहले हमारा ओपिनियन था उस व्यक्ति के प्रति, वो फिक्स्ड अभी भी है। अर्थात हम पीछे रह गए, वो तो आगे निकल गया, पर हमने मन में पकड़ के रखा है, फिक्स्ड ओपिनियन से, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाबा ने इसको क्या कहा आज? सूक्ष्म घृणा, ये नफरत है आत्मा के प्रति। और सेवा में क्या कहा? जो गिरा है उसको उठाना है, क्योंकि हर एक गिरता है। अगर उस समय उसको नहीं उठाया, उस समय उसको ठोकर लगा दी, तो शायद ज्ञान छोड़कर चला जाए या हमसे दूर हो जाए हमेशा के लिए, उसको कोई और से सहारा मिल जाएगा। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? ये परमात्म परिवार है, ये प्रभु परिवार है। वन वन की काठी, हर अलग अलग प्रकार के संस्कारों की आत्माएं एकत्र हुई है यहां पर। एक का संस्कार न मिले दूसरे से। एक गमला है, ठीक है, उसमें गाजर का बीज डाला, मिर्ची का बीज डाला, फिर आम का भी बीज डाला, करेले का भी बीज डाला, सारे झाड़ एक साथ उग रहे। परमात्मा परिवार, हर एक का अपना स्वभाव है, एक का ना मिले दूसरे से, और सभी विशेष है। बाबा ने कहा आज रचयिता बाप, मुरली की शुरुआत किसको देख रहे हैं? विशेष आत्माओं को देख रहे, कोटों में कोई आत्माओं को देख रहे, सब अलग अलग है, एक ही गमले में उग रहे। वो उनका जो भी हो, पर उनमें एक विशेषता जरूर है, एक नहीं तीन मुख्य विशेषता है हर एक ब्राह्मण आत्मा में। सबसे पहली विशेषता भगवान को पहचाना है उसने, चाहे ना अमृत वेला करता है, ना मुरली सुनता है, ना कोई धारणा दिखाई देती है हमको, मतलब वो श्रीमत पर नहीं, क्योंकि श्रीमत एक ऐसा टॉपिक है। श्रीमत हर एक की डिक्शनरी अलग अलग है, और हर एक की डिक्शनरी में श्रीमत की डेफिनेशन अलग अलग है। 100 लोग यहां खड़े हो जाए, सब अपनी अपनी डेफिनेशन बताएंगे, एक की ना मिले दूसरे से, और सभी लोग किसको कोट करेंगे? साकार मुरली, अव्यक्त मुरलिया, दादिया, ब्रह्मा, मम्मा, अपने अनुभव, बड़ों के अनुभव, सबकी परिभाषा अपनी अपनी है, ऐसा बना सकते हैं। ये श्रीमत है, वो कहेगा ये श्रीमत है, जबकि श्रीमत इज द श्रीमत, इट इज नॉट माई श्रीमत एंड यूअर श्रीमत। बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी उस द श्रीमत को वो पकड़ेगी। तो हम कहां थे? सेवा, प्रभु परिवार, अलग अलग प्रकार की आत्माएं, चाहे कैसी भी हो, उनमें यह विशेषता है भगवान को पहचाना। दूसरा प्यूरिटी। दूसरी विशेषता कौन सी है? सब में कि किसी ना किसी रूप से पवित्रता को धारण तो किया है। हां, हो नहीं रहा है वो अलग बात है, गिर रहे हैं वो अलग बात है, पर सबको उसका महत्व पता है और सबने उसको धारण किया है। और तीसरा, हर एक ने अपने जीवन को अर्पित किया है इस यज्ञ की वेदी पर। ये सब कहता तो है, ये सब बाबा तुम्हारा है, कहते तो है ना। तो ये तीन विशेषता है। तो सबसे पहली पॉइंट थी ज्ञान की, फिर है योग की, फिर है धारणा की, और चौथी है सेवा की। तो सेवा में क्या करो? समान का अनुभव, अपने कर्मों में समान को जोड़ते जाना है। बाबा ने क्या कहा? समान की माला बनाओ, समान की माला, और समान अलग अलग माला, जैसे एक माला दूसरी माला तीसरी माला चौथी माला जुड़ी होती है, वैसे समान की माला बन सकती है क्या? वो करके देखना है। तो सबसे पहला अनुभूति, दूसरा बहुत काल का पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ कैसा है? एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का नहीं, लंबा समय करते रहना। एक दिन दो दिन नहीं, बहुत लंबा समय। और ये तभी होगा जब हमारा आंखों से दिखावे वाला भाव हट जाएगा, ये मुझे अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। तीसरा है चैलेंज। बाबा ने कहा कौन सा चैलेंज है तुम्हारा? हमारा योगी जीवन है ये चैलेंज, सतत निरंतर करते रहना। चौथा, देही अभिमानी स्थिति। जैसे देहभान नेचुरल हो गया, वैसे देही अभिमानी को क्या करो? नेचुरल। नाम का उदाहरण दिया ना, नाम, कोई बुलाए तो एकदम हम जागते हैं, मुझे बुलाया, उसी तरह देही अभिमानी नेचुरल। देही अभिमानी, स्वराज्य अधिकारी, स्वमानधारी, तीन शब्द एक साथ आए। और पांचवी पॉइंट है एवर रेडी। क्या कहा? एवर रेडी हो जाओ, तैयार, रेडी है जाने के लिए। ऐसे कैसे? समानधारी आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, एवर रेडी आत्माओं को, फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, ऐसे अपने बोल से, व्यर्थ बोल से दूसरों को डिस्टर्ब न करने वाली आत्माओं को, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना आत्माओं को, कोटों में कोई आत्माओं को, ऐसे कर्मयोगी आत्माओं को, कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, निरंतर योगी आत्माओं को, ऐसे अनुभूति करने वाली आत्माओं को, अनुभूति कराने वाली आत्माओं को, निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे लाइट माइट आत्माओं को, ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, अनुभूति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे कर्म में लाइट माइट, ऐसे 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 मेहनत से मुक्त आत्माओं को, ऐसे ऐसे बहुत काल का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, एवरेडी आत्माओं को, अचानक का पाठ पक्का करने वाली आत्माओं को, ऐसे परमात्मा परिवार में शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 गिरे हुए को उठाने वाली आत्माओं को, मायूस आत्माएं, पुरुषार्थ में डल आत्माएं, या फिर संस्कारवश आत्माओं के प्रति भी स्नेह सहयोग की भावना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे वो हो गया व्यर्थ से मुक्त, ऐसे लवलीन आत्माओं को, ऐसे ऐसे इस क्लास में यहां से जाने के बाद सोने से पहले एक बार मुरली पढ़कर सोने वाली आत्माओं को, ठीक है क्या? बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
भर लीजिए शांति से भरे।